آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ के मुख्य समाचार में विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए फेडरल सरकार असमर्थ रही। अधिकारियों का कहना है कि क्वींसलैंड अगले कुछ हफ्तों में अपने ओमिक्रॉन कोविड-19 शिखर तक पहुंच सकता है। और खेल में मेलबर्न में रॉड लेवर एरिना में अमेरिकी खिलाड़ी मेडिसन कीज का सामना करने के लिए एश बार्टी तैयार। इस बुलेटिन में विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए फेडरल सरकार असमर्थ रही है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान श्री एल्बनीसी ने आपातकालीन सेवा कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और यदि लेबर फेडरल चुनाव जीतता है तो आपदा भुगतान की योजना की रूपरेखा भी तैयार की। उनका कहना है कि फेडरल सरकार का मौजूदा इमरजेंसी रिस्पांस फंड सहायता देने में विफल रहा है।
The idea that we don't need to prepare in this nation of ours for fires, for floods, for cyclone readiness is just extraordinary. And that's why we would, with our disaster ready fund, commit up to $200 million each and every year. For projects that will make a difference in terms of mitigation, that will prepare for disasters, be they fires or floods or cyclones or other natural disasters.
आज फिर से राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता, बूस्टर रोल आउट की प्रगति और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान पर बातचीत होगी। बैठक में प्राथमिक विद्यालय के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सभी राज्यों के परिवार और शिक्षक अगले सप्ताह स्कूल लौटने की तैयारी में हैं। फिलहाल देश भर में 5 से 11 वर्ष की आयु के 33.4% बच्चों को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। फेडरल विपक्ष की क्रिस्टीना केनेली ने ABC को बताया कि उन्हें इस बैठक से ज्यादा उम्मीद नहीं है।
What my frustration and my fear for today's national cabinet will be that it'll be just more of the same, where the premiers come along, they tell Mr. Morrison what they're doing, he doesn't really try to get any type of national consensus, and again the Australian people just pay the price for his failure to plan ahead.
न्यू साउथ वेल्स के अधिकारियों का कहना है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करने से पहले भी स्कूल के छात्र कोविड-19 को स्कूल परिसरों में ला सकते हैं और इसे सहपाठियों तक फैला सकते हैं। राज्य के कुछ स्कूलों में अभी तक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट नहीं पहुंचाए गए हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार की आलोचना की जा रही है। आलोचना के जवाब में प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि 2 बार साप्ताहिक परीक्षण व्यवस्था को स्कूल अवधि के पहले दिन से शुरू करना जरूरी नहीं है।
Well, the Department of Education has done an amazing job in sending out over 4 million tests right across the state. And as we said from the outset, those tests don't need to be done on day one. It's just that over the course of the first week, that every week 2 tests occur and that we will have supply to achieve that.
न्यू साउथ वेल्स सरकार ने राज्य के 3,000 स्कूलों को लाखों RAT की आपूर्ति की है, ताकि छात्र और शिक्षक फरवरी के महीने में सप्ताह में 2 बार खुद का परीक्षण कर सके। पिछले 24 घंटे की रिपोर्टिंग अवधि में न्यू साउथ वेल्स में 29 कोविड-19 संबंधित मौतें दर्ज हुई हैं और अस्पताल में फिलहाल वायरस से 2,722 मरीजों का इलाज चल रहा है। क्वींसलैंड के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों को अगले कुछ हफ्तों में अपने ओमिक्रॉन कोविड-19 चरम पर पहुंच जाना चाहिए। राज्य ने नवीनतम रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 11,600 नए संक्रमण और 15 कोविड-19 संबंधित मृत्यु दर्ज की हैं। अस्पताल में 829 लोग वायरस से ग्रसित हैं, जिनमें से 48 गहन देखभाल में हैं और 15 वेंटिलेटर पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री येवेट डियात का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या घट रही है।
What we are seeing and what we have seen since Wednesday is a decline each day of the number of patients at the Gold Coast Hospital. That is very positive news, and we are seeing some stabilising of hospitalisation across our Brisbane hospitals.
उधर विक्टोरिया में 5 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 37% बच्चों को अब कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। राज्य ने 15 कोविड संबंधित मौतें दर्ज की हैं और फिलहाल 1057 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज का कहना है कि विक्टोरिया के 4 सरकारी टीकाकरण केंद्र बच्चों के लिए वॉक इन टीकाकरण को भी स्वीकार करेंगे।
And paediatric vaccines, well, we all know, particularly as we push towards the first day of school, term one, there's still every reason to go and get our kids vaccinated and begin the journey.
इस बीच सिडनी के लिवरपूल अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नर्सों द्वारा मरीजों के अनुपात में स्टाफ की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है और अधिक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। लिवरपूल अस्पताल पिछले साल की कोविड-19 लहरों से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था और हाल ही में न्यू साउथ वेल्स की गहन देखभाल नर्सों के सर्वेक्षण से पता चला है कि महामारी के दौरान 2 साल काम करने के बाद उन्हें निराशा की भावना से भी जूझना पड़ रहा है। लॉरा ओकॉनल लिवरपूल अस्पताल में एक आईसीयू नर्स हैं और न्यू साउथ वेल्स नर्सेज एंड मिडवाइव्स एसोसिएशन की सदस्य भी हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ साल बहुत कठिन रहे हैं।
They've just pushed us and really abused our can-do attitude. Yes, we got into nursing because we love caring for people, and we've got to this point where we actually can't care for people safely, and that's scary. That's really scary going to work each day not knowing what you're going to confront.
उधर साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1953 नए कोविड मामले हैं, जो कल की तुलना में 448 कम हैं। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है और फिलहाल अस्पताल में कोरोना वायरस के 288 मामले हैं। नए मामलों की संख्या में कमी की खबर का स्वागत करते हुए प्रीमियर स्टीवन मार्शल ने कहा,
So things are tracking well at the moment. We can't be complacent. Our front line for this is making sure that we have people that develop symptoms going and getting that PCR test. There are no lines, there are no delays. People should go and get that PCR test. It's a preference to using the rapid antigen test.
उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 285,000 नए कोविड मामले सामने आए हैं और 665 कोरोना संबंधित मौतें दर्ज हुई हैं। भारत में वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 22,23,018 बतलाई जा रही है। इससे भारत में कुल संक्रमण की संख्या 4 करोड़ मामलों को पार कर गई है। अब मुद्रा दर की जानकारी में, इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 71 सेंट्स है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53 रुपए और 20 पैसे है। खेल समाचार में, एश बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सेमीफाइनल में खेलने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड नंबर 1 का सामना आज शाम 7:30 बजे मेलबर्न के रॉड लेवर अरीना में अमेरिकी खिलाड़ी मैडिसन कीज से होगा। अगर 25 वर्षीय एश ये मुकाबला जीत जाती हैं तो ये पहली बार होगा जब वे टूर्नामेंट के निर्णायक में जगह बनाएंगी। मैच से पहले 9 नेटवर्क से बात करते हुए बाटी ने मैडिसन कीज की काफी प्रशंसा की।
I've had plenty of battles with Maddie before. We played at Fed Cup. We've played in all different circumstances, and this is just going to add to it. I can't wait. I know it'll be a good one, and whoever can execute better will be in a final. How good.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में अधिकांश समय तक धूप रहने की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 35 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में आंशिक बादल रहेंगे, यहाँ का न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 27 तक जाने की संभावना। मेलबर्न में उमस के साथ एक दो बौछार और तूफान की संभावना, वहाँ का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री रहेगा। कैनबरा में एक या दो बौछार होने की आशंका और वहाँ का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम तापमान 30 तक जाएगा। सिडनी में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 29 डिग्री तक जाएगा। ब्रिस्बेन में बारिश के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 30 डिग्री। डार्विन में हल्की बारिश के साथ तूफान की संभावना, न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जाएगा। और वहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप के साथ ठंड रहेगी, वहाँ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 19 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।